जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
साधना का 40वां दिन स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो दिनचर्या में उठते भी गीत से हो तो बाप के और अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ ज्ञान के गीत गाओ सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ यह गीत गाना नहीं आता। आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में डैश क्या नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो, तो सारा दिन गीत गाते रहो, खुशियों में नाचते रहो। अमृत वेला दिनचर्या का सबसे पवित्र क्षण है, जहाँ आत्मा क्या करती है, गाती है और नाचती है। ये गाना केवल शब्द नहीं, सुर नहीं, स्मृति का झरना है, आत्मा में जो तरंगे उठ रही है, वो तरंगे उस परमात्मा से जुड़ रही है। जैसे सुबह पक्षी गाते हैं, चहचहाट होती है और वातावरण शुद्ध होता है, उसी तरह जब आत्मा सुबह सुबह गीत गाती है, कौन से गीत? खुशी के गीत, कौन से गीत? प्राप्तियों के गीत, कौन से गीत? 100 प्रकार के गीत बताओ, कौन से गीत गाती है? मिलन के गीत, प्राप्तियों के गीत, महिमा के गीत, स्वयं के गीत, शुक्रिया के गीत, भोग के गीत, प्रभु मिलन के गीत, उल्हानों के गीत और परमात्म विरह के गीत, परमात्म प्रेम के गीत, परमात्म उपकार के गीत, परमात्म आनंद के गीत और उमंग उत्साह के गीत, तप के गीत, त्याग के गीत, सेवा के गीत, धारणा के गीत, पवित्रता के गीत, शुभ भावना के गीत, शुभकामना के गीत, वैराग्य के गीत, वाह वाह के गीत, सतयुग के गीत, सूक्ष्म वतन के गीत, परम धाम के गीत, देवियों के गीत, लक्ष्मी के गीत, काली के गीत, हनुमान के गीत, अंगद के गीत, गणेश के गीत, दीदी दादियों के गीत, यज्ञ के गीत, मधुबन के गीत, ब्राह्मण जीवन के गीत, साकार के गीत, पालना के गीत, शिक्षा के गीत, योग के गीत और जन्मदिन के गीत और त्योहारों के गीत, दिवाली के गीत, नववर्ष के गीत, राखी के गीत, बर्थडे का गीत और शिव जयंती का गीत, नवरात्रियों के नवरात्रि का गीत और प्रत्यक्षता के गीत, फरिश्ता स्वरूप के गीत, ब्राह्मण जीवन के गीत, देवता जीवन के गीत, पूज्य पुजारी के गीत, स्वमान के गीत, स्वाभिमान के गीत, अस्मिता के गीत, सुख के गीत, अतीन्द्रिय सुख के गीत और रोने के गीत, विदाई के गीत, ज्ञान के गीत, भोजन के गीत, भोग के हो गया और धुलाई विरह हो गया, परिवार के गीत, विनाश के गीत, समय के गीत, तप के गीत, संन्यास के गीत, रास के गीत, महाराज के गीत और कुर्बानी के गीत, और उसके उपकारों के गीत, उसके पुकार के गीत, उसके आह्वान के गीत और मीठे मीठे बच्चों के गीत और अनादि गीत, अविनाशी गीत, स्वतंत्रता के गीत, मुक्ति के गीत, कर्मातीत अवस्था के गीत, प्रश्नों से परे जाने के गीत, व्यर्थ से मुक्ति के गीत, समर्थ के गीत, किसके संतुष्टता के गीत, सारी दिव्य गुणों के गीत। तो गीत गाना आत्मा का उत्सव है, आत्मा गीत गा रही है। क्रिश्चियन सेंट सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जब मृत्यु शैया पर था तब वो गीत गाने लगा और चिल्लाने लगा और नाचने लगा। तब तक सेंट फ्रांसिस बहुत बड़ा संत बन चुका था और फ्रांसिसियन ऑर्डर आ चुका था, एक अलग ही सेक्ट क्रिश्चियनिटी में। उसके असंख्य फॉलोअर्स थे और उसका जो मुख्य शिष्य कहो, हमारी भाषा में ब्राह्मणी या ब्राह्मण, इलियास, वो अपने मास्टर से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, खिड़की के बाहर हजारों लोग हैं, सब जानते हैं कि आप अब शरीर छोड़ने वाले हो और ऐसे समय पर आप गा रहे हो, ये क्रिश्चियन सेंट की डिग्निटी के नीचे है, शोभता है कि आपको ये गंभीरता से जाना चाहिए ताकि लोग समझे कि आप कितने बड़े प्रभु प्रेमी थे, आप कितने बड़े योगी थे, तपस्वी थे, शांति से आप शरीर छोड़ना चाहिए, तो लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आप सेंट हो, संत हो। सेंट फ्रांसिस क्या कहता है, मैं क्या करूं, मेरा हृदय धन्यवाद से भर गया है, अहोभाव से भर गया है, थैंकफुलनेस से भर गया है उस ईश्वर के प्रति, इस जीवन के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, जीवन इतना सफल हुआ, रोम रोम पुलक से भरा है, मैं चाहता नहीं हूं परंतु अपने आप गीत उठ रहा है, आत्मा अपने आप गा रही है, आत्मा अपने आप नाच रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये मेरे हाथ में ही नहीं है। कृष्ण इतिहास में ये पहला संत है जिसने गाते गाते और नाचते नाचते शरीर छोड़ा। लोग दुख में शरीर छोड़ते हैं, यहां मृत्यु ही उत्सव है, मृत्यु नृत्य बन गई है, आनंद आनंद, प्राप्तियों के गीत, आत्मा गा रही है, झूम रही है, नाच रही है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई पश्चाताप, ना किसी के प्रति कोई शिकायत, ना किसी के प्रति कोई कंप्लेंट, जो हो रहा है कैसा हो रहा है, बहुत अच्छा, जो हुआ वो कैसा था, बहुत अच्छा, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा, खुशी इतनी कि बात मत पूछो, सब अच्छे हैं, केवल जो कमरे में पार्टनर है वो छोड़कर, वो जो सेंटर में साथ में रहती है वो बहन, उसको छोड़कर, और जो डिपार्टमेंट में जो भाई है जो हमेशा लेट आता है और बताता नहीं है और उसका काम, उसकी सेवा हमको करनी पड़ती है बार बार, उसको एक को छोड़कर, हे प्रभु, बाकी अगर कहीं भूकंप आ जाए सब जगह हम सकाश देंगे, सकाश देंगे, इधर सकाश, उधर सकाश, उधर सकाश, सबको, ये एक को छोड़कर इसका कुछ करो। परमात्मा महावाक्य है, परमात्मा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, तो डैश 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 कौन बताएगा? ये परिवार सबसे बड़ा परिवार है तो तुम्हारी दिल बहुत बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, बातों से स्वयं को ऊपर रखना है। बातें हो रही है, बातें आ रही है, बातें जा रही है, उलझना नहीं है छोटी छोटी बातों में, खाने पीने की बातों में, कपड़ों की बातों में, वस्तुओं की बातों में, पैसों की बातों में, यहाँ नुकसान हो गया, वहाँ नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तीव्र पुरुषार्थ का नियम है बातों में उलझना नहीं है। जो स्वयं को बातों से ऊपर रखता है, छोटी छोटी बातें ऊपर, और फिर प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यज्ञ में ऐसा क्यों हो रहा है, राजनीति, मैं मेरा, तू तेरा, संघर्ष, पक्षपात, अन्याय। जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा था, उसके बाद गुलजार दादी के द्वारा 3 संदेश आए थे, उसमें एक प्रश्न यही था, ये ऐसा सब क्यों हो रहा है यहाँ पर। 2 उत्तर थे, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यहां से तो बाहर के लोग अच्छे हैं, ज्ञानियों से ज्ञानी अच्छे हैं, उनमें इतना अहंकार नहीं, इतना अहंकार क्यों, ये पक्षपात क्यों, ये पॉलिटिक्स क्यों, ये द्वंद्व क्यों, ये संघर्ष क्यों, ये मनी माइंडेडनेस क्यों, पैसा पैसा पैसा, पागल है पैसे के पीछे क्यों? उत्तर 2 है। पहला, जन जन के हिसाब चुप्त हो रहे हैं। बाबा ने कहा था, यदि तुमने किसी से कर्जा लिया है वही तो तुम्हारे द्वार पर आएगा पैसे लेने। अगर तुमने किसी से कर्जा लिया ही नहीं है तो वो क्यों आएगा? और तुमने कर्जे किससे लिए हैं? जन जन्म ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुपतू होंगे। बाहर वालों से इतना दुख नहीं होगा, बाहर वालों से परीक्षाएं नहीं आएगी, बाहर वालों से पेपर नहीं आएंगे। पेपर कहाँ से आएंगे? जो बाजू में अभी बैठा है, कौन है देखो, उसी से। भगवान का उत्तर था, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुप्त होंगे, एक। दूसरा, भविष्य पद। दूसरा उत्तर, भविष्य पद। किसी का पद बहुत छोटा है और इस जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, अपने आप विकर्मों करने की प्रवृत्ति जागेगी, क्योंकि उसे उसके पद की तरफ जाना है। चाहे कोई 10 साल से, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से है, सेवाएं बहुत की है, पर हम अभी देख रहे हैं अभी ये क्या हो रहा है, उसे बराबर वहीं पहुंचना है। वो पार्ट उसे खींच रहा है। ये 2 कारण है, हिसाब किताब और दूसरा पार्ट, पद, भविष्य पद। इसलिए कल भी कहा था, संसार के प्रति 3 बातें। पहला, इस संसार का कल्याण करना है, पर कल्याण करते करते 2 बातें भूलनी जानी है। कौन सी दूसरी बात? इस संसार से अलिप्त रहना, नहीं तो जिसका हम कल्याण कर जा रहे हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। इसके लिए संसार से निर्लिप्त रहना, अलिप्त रहना, डिटैच रहना, अप्रभावित रहना, और तीसरा सतत साक्षी भाव। अभिनय चल रहा है, खेल चल रहा है, सारा ध्यान अपनी स्थिति पर रखना है। कोई एक मुरली थी, मुझे याद नहीं उस मुरली की डेट, पुरुषोत्तम भाई कौन सी डेट थी वो, जिसमें बाबा ने कहा था 12 बार ड्रिल करो। और दुख तो सबको सबसे ज़्यादा तब हुआ था तब किसी बहन ने पूछा था बाबा कितनी बार, कितना टाइम, और बाबा ने कहा था 10 मिनट, और सारे सेंटरों पर टेंशन हो गया था तब। कौन सी मुरली थी वो, 12 बार ड्रिल करनी है और एक एक 10 मिनट। कौन सी मुरली थी, एक मुरली थी नहीं है, ड्रिल करो। तो 12 बार पक्का 12 बारी फरिश्ता बनो और 12 बारी निराकारी स्थिति। कौन सी मुरली थी वो, नहीं उसमें 10 मिनट का कहाँ आया है, ये नहीं है वो। उसमें पूछा किसी ने कितना मिनट करना बाबा, तो काम बढ़ने गया, टेंशन हो गया। 15-12-2009 श्योर, हाँ कम से कम 10 मिनट जिसमें 2009 सेम है उसमें वो है ना, हाँ तो फिर वही है। नहीं वो उसमें शब्द है तो फिर वही है। तो 12 बार तो नहीं, कम से कम 4 बार दिनचर्या में बहुत अच्छा योग का अभ्यास हो। एक अमृत वेला, एक नुमाश शाम, एक मुरली से पहले और एक रात्रि सोने से पहले, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक अच्छा योग का अभ्यास हो। अगर ये नहीं करेंगे तो मन उलझ जाएगा। आपने जो ड्रिल सुनाई वह एक बार में कितना समय ड्रिल करनी है, ये किसने पूछा था पता नहीं, पर कईयों ने कहा था नहीं पूछना चाहिए था। बाबा ने यहाँ तक तो बोल दिया था क्योंकि बात पूरी हो गई थी और दूसरा आगे पार्टियाँ वगैरह आ गई थी। और फिर लास्ट में किसी ने पूछा तो बाबा ने कहा था कम से कम 10 मिनट। दस मिनट तो ज़्यादा समय है, और वो भी 12 बार, तो सेवाएं तो छोड़नी पड़ेगी फिर। तो अच्छा योग का अभ्यास होता रहे। तो आज क्या कहा, गीत गाओ। कब से गीत गाना चालू करो, सुबह से आँख खुलते ही गीत सुनते भी हो और गीत गाते भी हो। भक्ति मार्ग में भक्तों की पालना सबसे ज्यादा किससे हुई, गीतों से, भजन से, कीर्तन से, अभंग। क्यों क्यों गाते थे, क्योंकि भाव उठते थे हृदय में, प्रभु प्रेम के गीत, प्रभु विरह के गीत। कहाँ सीखे थे उन्होंने ये, मीरा ने कौन सी डांसिंग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, कहाँ से उसने डांस सीखा था, प्रेम ने सब कुछ सिखा दिया। बंगाल में बाउल फकीर होते थे, बाउल फकीर अभी नहीं है, जैसे जैन फकीर होते हैं, जैसे सूफी फकीर होते हैं, वैसे बाउल फकीर, सखी सांप्रदाय, जो ईश्वर को अपना वो प्रेमी वो माशूक और मैं आशिक ऐसा नहीं, वो प्रियतमा और हम प्रियतम ऐसा मानने वाले। एक बाउल फकीर, एक तारा, एक तारा पता है, एक तारा होता है, एक तारा छोटा सा, एक तारा लेकर गीत गा रहा था, उसमें एक ही तार होता है बस। एक शास्त्रज्ञ पंडित वहाँ आता है, कहते हैं बंद करो ये सब गाना बजाना, क्यों गाते रहते हो? वो फकीर कहता है मैं प्रेम के गीत गाता हूँ। कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम, कहाँ वर्णन है प्रेम का, जब भी देखो तब सुन के रखा है, तुम लोग गाते रहते हो। प्रेम परमात्मा का द्वार है, मैंने सारे शास्त्र पढ़े, किसी शास्त्र में, किसी वेद में और उपनिषद में ये नहीं लिखा हुआ है, तुम कैसे गाते हो, प्रमाण क्या है उसका? वो बाउल फकीर कहता है दूसरा मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरे गीत ही मेरा वेद है, उपनिषद है, गीता है, मुझे और कुछ पता ही नहीं, मुझे यही आता है। वो कहता है ना, प्रेम को परिभाषित करो, प्रेम की परिभाषा दो तो मैं मानूंगा। व्हाट इज लव, डिफाइन लव। और उसका एविडेंस क्या है कि ये प्रेम से या इन गीतों से तुम भगवान के द्वार तक पहुंचोगे? तब वो बाउल फकीर एक गीत गाता है अपने एक तारे पर और गीत गाते गाते रोने लगता है। उस गीत का अर्थ कुछ ऐसा होता है, उस गीत में वो गाता है एक सुनार है, वो फूलों के बगीचे में जाता है, वो जो माली है बहुत गरीब है, उस माली से कहता है कि मैं तुम्हारे फूलों की जांच पड़ताल करने आया हूँ, फूल असली है या नकली है, और एक एक फूल को तोड़ता है और घिसता है अपने यंत्र पर यह देखने के लिए कि फूल असली है या नकली है। जैसे वो सोने के साथ करता है वैसे फूलों के साथ करता है, और वो देखकर उस माली के हृदय पर जो बीती वो अब मेरे हृदय पर बीत रही है तुम्हारे ये प्रश्न सुनकर। प्रेम की कौन सी परिभाषा और कैसे परिभाषित करो? प्रेम निशब्द है, ये समझाया नहीं जाता। तो आज दो सूत्र है, पहला सूत्र है गाना और दूसरा सूत्र है नाचना, नचाना। नचाना है या नाचना है, क्या करना है? नचाना है। एक महिला होती है, उसकी उंगली वो जा रही होती है तो एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जो उसका एक्सीडेंट कराता है और उसकी उंगली को चोट लगती है वो उसके ऊपर केस कर देती है और कहती है 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। कोर्ट में जाता है मामला तो वकील पूछता है इतनी सी उंगली पे चोट लगने के 20,000 हर जाना? वो कहता है हाँ, इसी उंगली पे तो मैं अपने पति को नचाती हूँ। ऐसी वैसी उंगली थोड़ी। तो क्या करना है? नृत्य। क्या कहा बाबा ने? खुशियों में नाचते हर कार्य करो। जीवन में बातें आएगी जाएगी, इंटरव्यू के लिए जाओगे रिजेक्शन होगा, रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस, नई दिशा निर्धारित करेंगे। दुखी नहीं होना है, जिसके साथ लंबा समय रहे वो अचानक चला गया, दुखी नहीं होना है, रहस्य को समझना है, जीवन के रहस्य को। तो खुशियों में क्या करो? नाचते रहो। ये नाच केवल शरीर का हिलना नहीं है, यह आत्मा के हल्केपन की उड़ान है। आत्मा क्या हुई है? हल्की, पकड़ के नहीं रखा है, इसने ये किया था, इसने वो किया था, ये ऐसा है, ये वैसा है। उस दिन भी हमने देखा था 10 कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, मानसिक विकृतियाँ है, वो हमने पकड़ रखा है, लेबल करके रखा है, पर्सनल कर लेते हर चीज़ को कि इसने मेरे लिए ऐसा कहा। उस दिन सुना था ना, दस सब कुछ नृत्य बन जाए, काम करना नृत्य बन जाए, चलना फिरना उठना बैठना सेवा क्या बन जाए, नृत्य। एक कविता भी थी ना हमारी नृत्य वाली, कौन सा नृत्य था वो, किसकी कविता थी, निर्विकारी नृत्य। अच्छा आशीष भाई, जब आत्मा बोझ रहित होकर नाचती है तो सारा दिन हल्कापन रहता है। आत्मा को सबसे ज्यादा कौन थकाता है, बोझ। कौन सा बोझ, मन का बोझ। सेवा नहीं थकाती है, सेवा 24 घंटे कर सकते हैं, नींद छोड़कर सब कुछ छोड़कर, पर जो थकान होती है सेवाओं में वो किसकी वजह से होता है, व्यर्थ का बोझ बहुत ज्यादा है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए इटर्नल नियम है, बातों में उलझना नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, हो रही है जा रही है, हो रही है जा रही है, बातों में प्रवाह है उनको बहने दो, उनको अगर पकड़ा तो क्या होगा, दुख होगा, वो बड़ी बन जाएगी। बाबा ने कहा है बड़ी बात को छोटी करो और छोटी को खत्म। हम क्या करते हैं, उल्टा, जो है नहीं उसको छोटा और जो छोटा है उसको और बड़ा, और फिर दुखी होते रहते हैं सोच सोच के, ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। गीत आत्मा का स्वर है और नृत्य आत्मा की गति। आत्मा जो कुछ करे वो गीत बन जाए, जो कुछ करे वो क्या बन जाए, नृत्य बन जाए। तो आज के ये दो सूत्र हैं, दिन भर याद रखेंगे, और आज का कार्य, तो आज दो होमवर्क है। पहला होमवर्क है राइटिंग जॉय टास्क, आनंद लेखन। कौन सा आनंद, ये तीन लाइनें हैं, इनको 10 बार लिखनी है। आज मैं गीत गाऊंगा, आज मैं नृत्य करूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा। तो आज कौन सी तीन लाइनें लिखनी है, ये तीन लाइनें हैं। कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। कौन सी लाइन है, हमारे साथ गाएंगे, आज मैं गीत गाऊंगा, कैसे गाऊंगा, अरे कैसे गाऊंगा, शांति से मौन में एकांत में। एक महिला थी, वो इतना भयंकर और कर्कश गाती थी, और वो अपने गायन की प्रैक्टिस रात को 10 बजे चालू करती थी। और उसके बाजू में जो पड़ोसी था वो बहुत बहुत दुखी रहता था, उसकी वो आवाज सुनकर। पर एक बार तो वो इतना गाती रही, 12 बजे कंटिन्यूस गाती रही गाती रही गाती रही, वो जो बाजू का व्यक्ति था उसने अपने आप को बहुत संभाला बहुत संभाला। जब 2 बज गए तब उससे अब संभला नहीं गया, वो उसके द्वार पर गया और कहा कि कब तुम गीत बंद करोगी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो कहती है, वो 2 बजे जाता है, वो कहती है गीत तो मैंने 12 बजे ही गाना बंद कर दिया, उसका प्रभाव अब तक चल रहा है। गीत तो 12 बजे ही बंद हो गया पर सुनाई उसको अब तक दे रहा है। आज मैं गीत गाऊंगा, बोलेंगे मैं गीत गाऊंगा, दूसरा आज मैं नृत्य करूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा। तो ये तीन हैं जिनको कितनी बार लिखेंगे, 10 बार, ठीक है 10 बार लिखो। दूसरा दूसरा गीत गाना है, कौन सा गीत गाएंगे? अगर जिनको गाना नहीं आता है वो बोलेंगे, खाली गुनगुनाएंगे। जब आत्मा गीत गाती है तो पवित्रता के प्रकंपन फैलते हैं, क्योंकि गीतों में क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है, वायुमंडल चार्ज होता है। हमें अपने प्रकंपन से वातावरण को बदलना है। यदि बाहर के भी लोग आए हुए हैं, जैसे 100-200 लोग आए हैं, हम ये सोचेंगे कि महान आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, सतयुग की आत्माएं हैं, ये विचार करते ही एक विचारों की तरंग फैलती है। ये सोचो ही नहीं, ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचेंगे? महान आत्माएं आई है। और इस परिवार के लिए भी क्या सोचेंगे? ये परिवार कैसा है? प्रभु परिवार है, महान आत्माओं का परिवार है। यदि कोई बाप है और उसके 5 बेटे और 5ों ही बेटे बड़े बड़े पोस्ट पर है, कोई कमिश्नर, कोई IAS, कोई IPS, तो बाप को कैसी खुशी होती है? वैसे ये जो परिवार है, इधर कौन कौन है? ये शंकर, ये अंगद, एक हनुमान, एक गणेश, ये देवी, ये काली, ये सरस्वती, ये वैष्णवी, वो पीछे शीतला बैठी है महाकाली, कोई संतोषी, इतनी बड़ी बड़ी देवियां एक ही परिवार में, तो ये परिवार कितना बड़ा है। परिवार में रहते रहते परिवार की आत्माओं के प्रति हमारे मन में नेगेटिविटी भर जाती है, क्योंकि हम उनके बार बार अवगुण देखते रहते हैं। अपने आप को और भगवान क्या कहता है, ये प्रभु परिवार है, ये परमात्मा परिवार है, इसमें एक एक महान आत्माएं आई हुई है, इतनी सारी देवियां बैठी है। संतोषी माँ, संतोषी माँ पता है ना, ये डिजिटल माता है, पहले ये थी नहीं। जब 1980s में मूवी आई थी जय संतोषी माँ, तब से ये इंट्रोड्यूस्ड हुई है। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। तब लोग स्पेशली माता है, सिनेमा थिएटर में चप्पल बाहर निकाल के अंदर जाती थी मूवी देखने, और आंसू बहाती थी सिनेमा हॉल में, मैं तो आरती उतारू रे जय जय संतोषी माता। संतोषी माता का व्रत किस किस ने रखा है, हाथ खड़ा करो जरा। अरे बाप रे इतनी माता है। ये तब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी डिजिटल गॉडेस। तो बाबा ने कहा तुम हो संतोषी माँ, तुम हो वैष्णव देवी, तुम हो दुर्गा, तुम हो काली, तुम सरस्वती, तुम हो लक्ष्मी, तुम हो। और ये परिवार इतनी सारी देवियों का और इतने सारे देवताओं का परिवार है, इसलिए चाहे किसी में 1,00,000 अवगुण क्यों ना हो, पर भगवान कह रहा है ये परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ परिवार है, इसलिए अपनी दृष्टि को क्या करना है, ऊंचा कर देना है। और जैसी दृष्टि ऊंची हो जाती है, व्यर्थ समाप्त होने लगता है, नहीं तो उसी गोल गोल चक्र में घूमते रहते हैं। इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा वैसा किया, ये अच्छे लोग नहीं है, बहुत ही खराब है। बाबा हमने तुमको मांगा था भक्ति में, ये परिवार तुम कहाँ से लेके आए? जन्म जन्म से प्रार्थना की थी प्रभु तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, पर ये तो कहा ही नहीं था जब आओगे परिवार भी साथ लेके आओगे और उनके द्वारा हिसाब चुकता होगा, और सबसे ज़्यादा हिसाब ये रूम पार्टनर जो है, और ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, और जो सेंटर वाले हैं, उन्हीं से चुकता हो रहा है। सारा परिवार ज्ञान में चल रहा है, पर उस पति से सबसे ज़्यादा हिसाब चुकता हो रहे हैं, उस पत्नी से सबसे ज़्यादा हिसाब चुकता हो रहे। पुलिस अफसर ने महिला से कहा कि आपके साहस की दाद देनी पड़ेगी, आपने अंधेरे में चोर को पकड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई, कमाल है आपकी। महिला कहती है, मुझे पता ही नहीं वो चोर था, मुझे तो लगा मेरा पति। दिखाई नहीं दिया। तो आज ये दो कार्य करने हैं। सबसे पहला 10 बार ये 3 लाइन लिखनी है और अनुभव भी करना है, और दूसरा गीत ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। उस गीत को या तो गाना है या तो बोलना है, दोहराना है या पढ़ के सुनाना है और उसको पोस्ट करना है। आज के 10 प्रश्न। मुरली है 21-10-87 की, 21-10-87 की। 10 प्रश्न, यही 10 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, परंतु ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे। जो अभी सुन लिया बस सुन लिया, यही आएंगे। हाँ, इन्हीं में से सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के, ये दिवाली की मुरली है, सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपने सभी दीप प्राणियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम की डैश हो, शक्तियाँ, बकरियाँ, शेरनियाँ, रानियाँ। कौन हो संगम की बकरियाँ? शक्तियाँ, शेरनियाँ, रानियाँ। उत्तर है अरविंद भाई, शक्तियाँ। रॉन्ग, रानियाँ। अगला प्रश्न, दीप दिवस नहीं कहते, दीप माला दिवस कहते, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के डैश का यह यादगार है। विचित्रता, पागलपन, दीप माला, संगठन, आप सबके ये है दीप माला या संगठन? आप सब आत्माओं के, विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है। तीसरा प्रश्न, दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का डैश है। सिरदर्द, दूसरा प्रकाश, तीसरा बिजली विभाग का सपना, चौथा यादगार। यादगार चौथा, ताजपोशी भविष्य की निशानी और डैश संगम के दाता रूप की निशानी है। महालक्ष्मी, महाकाली, शीतला देवी, धन देवी, धन देवी, विट्ठल भाई राइट। उत्तर है धन देवी। संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा उतना डैश है। मोटा, खोटा, विशेष, महान। कल प्रश्न पूछा था, महीन और सूक्ष्म में क्या अंतर है? महीन शब्द और सूक्ष्म शब्द में क्या अंतर है? ढूंढा क्या? कल कहा था ना, महीन अर्थात कोमलता, महीन अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसकी बनावट से संबंधित है, अर्थात जैसे कि महीन कपड़ा, महीन धागा, स्थूलता, वो दिखा रहा है क्या, जो दिखाई देता है उसकी बनावट से संबंधित है, कोमलता से संबंधित है। जैसे महीन भाव, कोमल भाव, महीन धागा, तो महीन शब्द का संबंध बनावट से है और कोमलता से है, डेलिकसी से है और उसका वो थिननेस, पतला, महीन अर्थात पतला। और सूक्ष्म जो है वो अदृश्य से संबंधित है, गहराई से संबंधित है। आत्मा सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शब्द का संबंध अदृश्य से है, गहराई से है, चेतना से है। महीन शब्द का संबंध स्थूल से है, बनावट से है और पतला, पतलेपन से है। पतला, महीन अर्थात पतला, महीन धागा। तो संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा उतना खोटा, कि मोटा, कि विशेष, महान। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता, लेकिन पुराना, पुराने डैश में ही रहते हो, पुराने संसार में, पुराने स्मृति में, पुराने शरीर में, पुराने वस्त्र में, वस्त्र में। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान डैश भविष्य में धारण करेंगे, काला ड्रेस फरिश्ता ड्रेस देवताओं का ड्रेस शरीर, उत्तर शरीर। ब्राह्मण जीवन का डैश है सदा नाचना गाना सदा जोत से जोत जगाना, उत्तर फैशन अपमान फल अधिकार अधिकार। पुराना खाता है ही डैश का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता, उत्तर SBI माया कलयुग रावण, उत्तर रावण। लास्ट प्रश्न, बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो, कौन हो तुम? बेहद के राजाओं के राजा की रानियां, वो कौन सा गीत है जिसमें है राजा अधिराज हो? आखिर वो दिन आया आज, उसमें है ना, तुम कौन हो? भगवान को क्या कह रहे, तुम हो राजा अधिराज, आखिर वो दिन आया आज। तो बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो, सतयुग में होगी देव रानियां, लेकिन अभी हो, अभी डैश हो, तकिया रानियां मधुबन रानियां झाड़ू पोछा रानियां परमात्मा रानियां, उत्तर है परमात्मा रानियां। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहला अमृत वेले के महावाक्य, दूसरा दो सूत्र, पहला सूत्र था गीत गाना और दूसरा सूत्र था नाचना। उसके बाद में हमने देखे दो होमवर्क, पहला होमवर्क था आज मैं गाऊंगा, आज मैं नृत्य करूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा, और दूसरा होमवर्क था एक गीत जो कि अपनी आवाज़ में खुद गाना है और रिकॉर्ड करना है, ताकि कैसी भी आवाज़ हो, उस महिला जैसी आवाज़ भी हो तो भी चलेगा। तो चाहे कुछ भी हो रहा है जीवन में, आधार सहारा एक बाप है। जब जीवन उलझा सा लगे तभी वो सहारा देता है, दिशा दिखाता है। जब जीवन में तन्हाई छा जाती है तो ही वो ही साथ निभाता है, और चारों तरफ तपिश ही तपिश है, आग ही आग है, शीतल जल भी कौन बरसाता है? वही बरसाता है। और जब जीवन में कुछ भी दिखाई ना दे, अंधेरा ही अंधेरा हो, और जब डर लगता है और साहस देने वाला वही है, और जब चारों तरफ से किनारा हो गया हो तो गोद में लेने वाला वही है, और जब जीवन में पाँव डगमग होने लगे थामने वाला भी वही है, और जब आंखें नम हो जाए तो प्यार से पोंछने वाला भी वही है, और मन बहुत भारी भारी लगे तो हल्का करने वाला कौन है? देहधारी वही है। कौन वही है? ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। तो आज हमारे बीच में विष्णु प्रिया बहन जी आए हैं, विष्णुप्रिया बहन जी सेंटर पर समर्पित बहन है, शांति सरोवर में रहते हैं, और बाबा के यज्ञ के बहुत बहुत सुंदर गीत इन्होंने गाए हैं, और जो संडे की अव्यक्त मुरलियाँ होती है उस पे गीत कुछ बनाते भी है गाते भी है। तो आज हम सब का ये सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में भी आए हैं, और वो गीत गाएंगे भी, और थोड़ा सा हमको अगर हो सके तो गीत गाना सिखाएंगे भी, क्योंकि आज का होमवर्क ही क्या है, गीत गाना। तो अभी विष्णुप्रिया बहन गीत गाएंगे, और सौभाग्य से आज के दिन ही ये वो यहाँ आए, और आज का ही ये वाला होमवर्क है, और बाबा के महावाक्य भी गीत और नृत्य पर ही हुए, और आज को यही वाला गीत आप सबको अपनी आवाज़ में गाना है। तो आज जो गीत आप गाएंगे ये आज का होमवर्क है, साथ साथ में पहले ये गाएंगे, फिर सेकंड टाइम में भले साथ में गाएंगे। तो ठीक है, तो नैनों के झरोके, इस गीत को विष्णुप्रिया बहन जी ने गाया है। और साथ में शारदा बहन जी ने भी गाया है थोड़ा सा उसका भाग, तो अभी हम सुनेंगे।
ओम शांति। सबसे पहले तो प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आदरणीय सचिन भाई जी ने जो लिखे थे वो गीत हमें गाने का सौभाग्य मिला है। और हमारे आदरणीय कुलदीप दीदी जी, जहाँ पर हमारे दीदी जो है, उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी भाई जी गीत लिख के भेजते हैं दीदी तुरंत हाँ बोलते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। उनके एनकरेजमेंट और उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, इसलिए हम ये गीत हम रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। जैसे भाई जी ने कहा, अव्यक्त वाणी के गीत भी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अभी तक 150 सॉन्ग्स के ऊपर, अव्यक्त वाणी के ऊपर गीत रिकॉर्डिंग हुआ है। अभी हम पहले बाबा की याद में गीत सुनेंगे।
नैनों के झरोखे जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहे हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही कुछ न दिखे और चांद से चमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है। बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है, मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। बाबा बिना सुनी दुनिया ना भावे, नैनों के झरोखे में बस रूप तिहारो, सांझ सितारे कर प्रीत बढ़ावे, दिन रैन बाबा मेरे मन में समावे, सांझ सितारे प्रीत बढ़ावे, दिन रैन बाबा मेरे मन में समावे। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब भूल से डगमग पाव हो और कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नम सी और प्यार से पूछ वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है।
यज्ञ की, सेंटर की सेवाएं और बाकी सब सेवाएं, इन सब सेवाओं के लिए बाबा की तरफ से विष्णुप्रिया बहन जी के लिए ये ट्रॉफी है, गॉड्स बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी, हम सब की तरफ से आपके लिए। एक कविता, आज का टॉपिक क्या है, बैठे स्मृति में खरोच आ जाएंगे।
ओम शांति। जैसे कि आज क्लास कराई, नाचना गाना और कविता, तो मैं तो इन सब से बहुत दूर रही हूँ। भाई जी ने जब टॉपिक दिया था तो इशारे से मैंने मना किया, पर उन्होंने भी इशारे से कहा कि हाँ। तो फिर निमित्त भाई जी हैं, बाबा को कराना होगा करके हिम्मत रखी। स्पष्ट नहीं हो रहा था विषय की स्मृति में खरोच, तो पुरुषोत्तम भाई से थोड़ा गाइडेंस लिया, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया, तब थोड़ा बहुत बना पाए हैं। स्मृति में खरोच। स्मृति की धरती पर आ गई जो खरोच, स्मृति की धरती पर आ गई जो खरोच, वो केवल पीड़ा नहीं है ईश्वर की खोज। खरोचे इसलिए हैं कि हम पहचाने आत्म स्वरूप, ये तन का खेल है ना इसमें कोई स्थाई रूप। जब योग की ज्योति जले, मोह का अंधकार मिटे तो हर खरोच प्रेम रस में अमृत बनकर लिपटे। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तब हर दर्द एक मधुर संगीत बन जाती है। स्मृति से ही जागृति, विस्मृति में है अंधियारा। स्मृति में खरोच आने से ही धुंधला लगता है ब्राह्मण जीवन सारा। स्मृति में खरोच लगी है देह भान की, स्मृति में खरोच लगी है देह अभिमान की। इसमें मलहम लगाएं शिव नाम की। स्मृति में खरोच है जन्म जन्मांतर के विषय वासनाओं की। स्मृति में खरोच है नाम मान शान की। इसको मिटाएं मलहम लगाकर शिव नाम की। स्मृति में खरोच है दिल शिकस्तपन की। स्मृति में खरोच है पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधनों की। इसमें मलहम लगाएं शिव नाम की। साथ ही मैं पूरे प्यारे शिव बाबा के प्यारे प्यारे एंजिल्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा टूटा फूटा प्रयास था, लेकिन आज अपने अनुभव से कहूँगी कि यदि हम सभी भाई जी के सानिध्य में रहें, क्लास अटेंड करते रहें, तो हमको नाचना गाना कविता बनाना सब कुछ आ जाएगा। शायद ही कोई चीज़ है जो हम ना कर पाए। मेरे जीवन की ये पहली कविता है जिसका मैंने बहुत ही गहराई में चिंतन किया और अनुभव किया कि जब कोई विषय जिस दिन से मिला है, दो दिन पहले मिल गया था, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चला, बहुत कोशिश की इसको आध्यात्मिक रूप से बनाने की, थोड़ा सहयोग भी लिया हमने। पुरुषोत्तम भाई ने दो लाइन बनाई तो हमारे लिए फिर सहज हो गया उसको और आगे बढ़ाना। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम् निराकार तेजोमय पावनम् प्रभात काले स्मरणं दिव्यं सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम् तोड़ दे नींद की जंजीरे थाम ले तप की मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरे थाम ले तप की मशाले फाड़ दे आलस की काली चादर निद्रा से तप काना कर अनादर सपनों का आवेश पीने से कर इनकार रूहानी योद्धा कर अब ललकार न सो न लेट हो जा तैयार उठ चल कर तम से दुनिया बदलेगी तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी उठ तपस्वी टूटे तो विश्व सवरेगा जगे तो भाग्य निखरे अमृत वेले की है पुकार न रुक न झुक हो जा निराधार बढ़ चल बन युगा